परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओ, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
अच्छाई क्या करोगे, ईमान से बचोगे, सबने गुनाह किया है, सब उससे दूर है। अच्छाई क्या करोगे, ईमान से बचोगे, सबने गुनाह किया है, सब उससे दूर है। है कोई उसके जैसा नहीं, एक भी नहीं, चाहे हो कोई कैसा, चाहे हो कोई कैसा नहीं, एक भी नहीं, जो अपनी जान दे दे नहीं, एक भी नहीं, सबके गुनाह ले ले, सबके गुनाह ले ले, नहीं एक भी नहीं, कोई नहीं अच्छा नहीं।
तो कौन सा ऐसा नाम है आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कि जिस नाम के वसीले से हमें नजात मिलती हो।
हर पाप से छुड़ाता, अपना लहू बहाता, दुनिया को माफ करता।
प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर की निकटता में रह करके आनंदित हैं। मित्रों, मैं आप सबका फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष हमारे उन भाई बहनों का जो आज पहली बार इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मुझे आशा है कि आज भी आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि रोम की कलीसिया को दी गई पौलुस की शिक्षाएं समाप्त हो गई है और अब वह अपनी व्यक्तिगत गवाहियों को दे रहा है कि वह अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का प्रेरित है या सेवक है। वह महायाजक स्वरूप अन्य जातियों को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करता है कि वे पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र बनकर परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो जाएं। तो मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, दया और करुणा के लिए जिसे आप हमारे जीवन में प्रतिदिन देते हैं। आज इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यद्यपि कि हम अपने अपने घरों में काफी दूर बैठे हैं, लेकिन एक साथ हम आपके जीत वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। आज जब हम आपके वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे हर एक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि एक एक जीवन आज के दिन पौलुस की उन गवाहियों के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, जो निराश हैं, जो दुखी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में आशाएं खो दी है, जिनके परिवार में आर्थिक तंगी है, व्यक्तिगत तनाव है, पारिवारिक तनाव है। प्रभु जी, आप उन पर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें, ताकि एक एक जीवन आपके वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करने पाए। आज के इस अध्ययन पर हम आपके विशेष आशीष मांगते हैं और चाहते हैं कि आप हम सबकी सहायता करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज आप मेरे साथ निकाल के रखें रोमियो की पत्री 15 अध्याय और उसके 17 पद से हम अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसके 17 पद, यहाँ पर लिखा है, सो उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूँ। मित्रों, पौलुस ने निर्भय होकर रोमी के विश्वासियों को पत्र लिखा था, परंतु उसे यह बोध हुआ कि रोम के पवित्र जनों को संभवतः उसके प्रबोधन की आवश्यकता नहीं थी, अतः वह उनसे क्षमा याचना करता है। परंतु उसने जो लिखा संपूर्ण विश्वास के साथ लिखा था, इसमें व्यक्तिगत विचार नहीं थे। वह मसीह यीशु का दास था और उसकी इच्छा पूरी कर रहा था। मित्रों, यह एक महत्वपूर्ण बात है और यह एक अवगुण है जो मसीह के सेवक में कभी नहीं होना है, और वह घमंड है। हमें प्रभु यीशु मसीह के सेवक का स्थान लेना चाहिए, ऐसे कि जैसे मात्र वही हमारा स्वामी है, इसमें व्यक्तिगत हस्तक्षेप ना हो, जैसा कि हम में से कई लोग करते हैं। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसके 18 और 19 पद में आगे लिखा है, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का हियाव नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। मेरे प्रिय मित्रों, पौलुस इस गद्यांश में बड़ी महत्वपूर्ण बात को कहता है। यदि हमें पौलुस को समझना है, और विशेष करके यह कि उसने या पौलुस ने रोम में कलीसिया की स्थापना की, तो हमें यहाँ उसकी बात पर विशेष ध्यान देना है। पौलुस कहता है, मैं अन्यों द्वारा किए गए परमेश्वर के कामों का श्रेय नहीं लेता, विशेष करके अन्य जातियों में। निसंदेह वह पेंतिकोस के दिन के प्रचार का श्रेय नहीं ले रहा था, जो सुसमाचार प्रचार का आरंभ था, और अन्य जातियों में सुसमाचार भी पहुंचा। मेरे मित्रों, वह आरंभिक अन्य जाति विश्वासियों का भी श्रेय नहीं ले सकता है। वह शमौन पत्रस था जो कर्नेलियुस के कुटुंब में सुसमाचार लाया था। पौलुस केवल उन्ही उपलब्धियों की चर्चा करेगा जो मसीह में उसके कामों द्वारा प्राप्त की। अन्य जातियों का प्रेरित होने के कारण उसकी सेवा विलक्षण ही थी। प्रियो, लिखा है कि चिन्हों और अद्भुत कामों, कलीसिया में ये प्रेरितों एवं सेवकों के विश्वसनीयता के प्रमाण थे। कलीसिया को उचित आधार पर दृढ़ करने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिए जाते थे, क्योंकि उस समय नए नियम का वचन लिखित रूप में नहीं था। मेरे मित्रों, पौलुस इफिसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 20 पद में विश्वासियों से कहता है कि प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। उसके कहने का अर्थ यह नहीं है कि प्रेरित नींव हैं। मसीह की अपेक्षा अन्य कोई कलीसिया की नींव नहीं है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 11 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, परंतु मसीह यीशु की नींव प्रेरितों द्वारा डाली गई है। पौलुस के कहने का अर्थ यही है। पौलुस आगे कहता है कि मसीह यीशु का सुसमाचार वह लेकर आया था इल्लुरिकुम तक। इल्लुरिकुम इटली के निकट एक रोमी प्रदेश था जो एड्रियाटिक सागर और दनुबे नदी तक फैला हुआ था। इससे स्पष्ट होता है कि पौलुस का सुसमाचार प्रचार यरूशलेम से रोम के निकट तक पहुंच गया था, परंतु पौलुस अभी तक रोम में नहीं पहुंचा था। वस्तुतः पौलुस की इस यात्रा का अभिलेख हमारे पास नहीं है। मेरे प्रियो, इसमें शक नहीं कि पौलुस अनेक स्थानों में प्रचार करने के लिए गया था जिसका ब्यौरा हमें नहीं दिया गया है। कुछ विचारकों का मानना है कि पौलुस स्पेन भी गया था। मेरे विचार में इस पत्री से विदित होता है कि वह स्पेन गया था। मेरे विचार में वह बर्तामिया भी गया था क्योंकि उसने रोमी साम्राज्य का पूर्ण भ्रमण किया था, जैसा कि हम आगे देखेंगे। रोमियों की पत्री 15 अध्याय उसके 20 और 21 पद में हम पढ़ते हैं, पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाओ, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, हो सकता है कि मेरा अनुवाद इन पदों को और अधिक स्पष्ट करे। निसंदेह इस प्रकार सुसमाचार प्रचार की इच्छा लेकर उन स्थानों में गया जहां मसीह का नाम नहीं सुनाया गया था, अर्थात नहीं सुना गया, न कि किसी और की नींव पर घर बनाया, जहां की लिखा है जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। मेरे मित्रों, पौलुस के लिए प्रचार करना स्पर्धा नहीं सम्मान की बात थी, जिसके कारण वह उन स्थानों में अग्रगामी हुआ जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा था। पौलुस की सेवा अपने ही प्रकार की विलक्षण सेवा थी। पौलुस ने उन स्थानों में प्रचार नहीं किया जहां सुसमाचार किया जा चुका था। यदि वहां कलीसिया भी थी तो भी वह वहां नहीं गया था। वह एक सच्चा परमेश्वर का भक्त था और प्रचारक था, जिसे नए नियम में प्रचारक कहा गया है। पौलुस के पास बुनियादी काम करने के लिए अग्रगामी दल नहीं था। किसी भी नगर में पौलुस का स्वागत नहीं किया गया था। वहां का प्रशासनिक अधिकारी उससे भेंट करने के लिए नहीं आया था। मेरे मित्रों, यदि उसका स्वागत किसी ने किया तो वह पुलिस अधिकारी था, उसे बंदी बनाकर कारावास में डाल देता था। अब क्योंकि कलीसिया की नींव डालने वाले प्रेरित थे, इसलिए कलीसिया को प्रेरितों की परख में दक्ष होना था कि जो प्रचार किया जा रहा है वह कैसा है। मेरे मित्रों, पौलुस के पास परमेश्वर प्रदत्त प्रेरित के प्रमाण थे। पौलुस और बरनाबस के बारे में कहा गया है प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसके 3 पद में, वे बहुत दिन वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाप से बातें करते रहे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। जी हाँ, उस युग में प्रेरितों और सुसमाचार प्रचारकों को यह पहचान थी कि चिन्ह और चमत्कार होते थे। वे हाथ में नया नियम लेकर नहीं आते थे, तब तक नया नियम लिखा ही नहीं गया था। वे इन प्रमाणों के साथ आते थे, चिन्ह और अद्भुत काम। और एक दिन ऐसा भी आया जब चिन्ह और चमत्कार नहीं रहे। प्रेरित योहना ने अपने दीर्घायु जीवन के अंत में लिखा है, दूसरा योहना की पत्री उसके 10 अध्याय में, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। उस युग में भी उचित शिक्षा परमेश्वर के जन की पहचान थी। आज भी उचित शिक्षा प्रचारक की पहचान का चिन्ह है, न कि चिन्ह और चमत्कार। मित्रों, यह लिखते समय मेरी मेज पर पत्रों का ढेर लग रहा है। इन पत्रों के भेजने वाले वे लोग हैं जो रूढ़िवाद, गलत शिक्षा और मिथ्या सिद्धांतों द्वारा बहकावे में आ गए हैं। यद्यपि आज पवित्र आत्मा काम करता है, परंतु शैतान भी काम कर रहा है। शैतान बहुत व्यस्त है। असंख्य विश्वासी मिथ्या या गलत शिक्षाओं द्वारा भटक रहे हैं। वे उनके जाल में फंस रहे हैं क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं। पौलुस अत्यधिक सावधानी पूर्वक कहता है कि परमेश्वर का राज्य मांस खाना या ना खाना नहीं है। परमेश्वर का राज्य चिन्ह और चमत्कार भी नहीं है। परमेश्वर का राज्य केवल धार्मिकता है। मैं ऐसे पंथ के बारे में भी सुनता हूँ जो एकत्र तो होते हैं परंतु परमेश्वर की अपेक्षा व्यभिचार के अनुष्ठान करने को और वे अन्य भाषा बोलने को चिन्ह की चर्चा करते हैं। मेरे मित्रों, उचित तो होगा कि भाषा स्वच्छ हो और परमेश्वर का वचन सही सही सुनाती हो। आज अनेकों को इसी की आवश्यकता है। आप जो इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपको भी इसकी आवश्यकता हो सकती है। मेरे मित्रों, पौलुस ने सदैव ही वहां प्रचार किया जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा था। वह एक सच्चा प्रचारक एवं सेवक था। आगे पौलुस कहता है कि वह उस स्थान में नहीं गया जहां पर सुसमाचार प्रचार किया जा चुका है। तो रोम की कलीसिया का संस्थापक कौन था? वह प्रस्तावना में और यहां भी स्पष्ट करता है कि रोम की कलीसिया का संस्थापक वही है, अर्थात पौलुस। मेरे मित्रों, रोमियों की पत्री 16 अध्याय में कुछ रोमवासियों से हमारा परिचय करवाया जाएगा जिन्हें पौलुस जानता था। अभिलेखों से पता चलता है या विदित होता है कि पौलुस उन्हें मसीही विश्वास में लाया था। पौलुस की भेंट उनसे रोमी साम्राज्य में हुई थी और उनमें से अनेक जन आकर्षित होकर रोम आ गए थे और वहां वे प्रभु यीशु के नाम में एकत्र होते थे। मुझे पूरा विश्वास है कि वे अपने लिए एक पास्टर पौलुस के बारे में चर्चा करते होंगे। उसने वहां व्यक्तिगत रूप में जाकर कलीसिया की स्थापना नहीं की थी, उसने दूर ही से उस कलीसिया की स्थापना की थी जिसे आप कह सकते हैं आत्मिक रडार द्वारा। मेरे मित्रों, जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि यह पद पौलुस की सेवा में उसका प्राण प्रिय पद था। यह यशायाह नबी की पुस्तक 52 अध्याय उसके 15 पद का संदर्भ है, अर्थात पुराने नियम से। मित्रों, पौलुस आत्मिक दृष्टिहीनों में सुसमाचार प्रचार करने में अति हर्षित रहता था। पौलुस के प्रचार करने के बाद कुछ भाई कहते होंगे, भाई पौलुस, मैं समझ गया, मैं मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। मेरे मित्रों, मसीह के विषय सुनाने और मनुष्यों को उसका अनुयायी बनाने से बढ़कर उत्साह की कोई बात ही नहीं है। इसका कारण यह है कि लोग प्रभु को जानेंगे तो उनके जीवन में परमेश्वर की शांति और आनंद प्राप्त होगी। आज बहुतों के जीवन में समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, अशांति है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में अर्थात उनके घर में मसीह नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है कि शांति का राजकुमार हमारा प्रभु यीशु है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में नहीं लाते हैं तो निश्चय जाने कि आपके घर में अशांति होगी। और इन्हीं बातों को पौलुस स्पष्ट करता है, लोगों को बताता है जहां पर लोगों ने अभी तक नहीं सुना है। हम रोमियों के पत्री 15 अध्याय उसके 22 पद में आगे पढ़ते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा। मित्रों, ध्यान दीजिए, जब पौलुस कहता है कि बार बार रुका रहा तो आप निश्चय जानिए कि उसके सामने वास्तव में रुकावट थी, अड़चने थी, अनेक बाधाएं उसके मार्ग में थी जिस कारण से वह रोम तक नहीं पहुंच पा रहा था। आगे पढ़ते हैं रोमियों की पत्री 15 अध्याय उसके 23 और 24 पद में, परंतु अब मुझे इन देशों में और जगह नहीं रही और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। इसलिए जब इस्पानिया को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट करूं और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा दो। मित्रों, ध्यान दीजिए कि पौलुस स्पष्ट करता है कि वह सुसमाचार को दूरस्थ अर्थात दूर स्थान में ले जाना चाहता था और वह रोम को जा रहा था। मित्रों, अब वह एक बड़ी विचित्र बात को कहता है, अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए जगह नहीं रही। पौलुस की इस बात पर प्रश्न उठता है, क्या उसके कहने का अर्थ यह है कि रोमी साम्राज्य में उस समय वह जहां था वह अब सुसमाचार प्रचार का अवसर नहीं था? क्या उसके लिए सब द्वार बंद हो गए थे? क्या सबका उद्धार हो गया था? क्या प्रत्येक एकांत स्थान में भी सुसमाचार का प्रचार किया जा चुका था? मित्रों, मैं इन प्रश्नों के उत्तर में कहता था नहीं, परंतु एशिया माइनर की सातों कलिसियाओं के क्षेत्रों का भ्रमण उसने किया। मैं नहीं कह सकता कि मैं सही था, क्योंकि पौलुस और अन्य गवाह विश्वास योग्य थे और सुसमाचार प्रचार संपूर्ण क्षेत्र में किया जा चुका था। डॉक्टर लुका कहते हैं कि यहूदी और अन्य जाति हर एक मनुष्य ने सुसमाचार सुना है। इसका अर्थ यह नहीं कि सबने मसीह को ग्रहण कर लिया था, परंतु सच यही है कि वचन सबने सुना था। अब पौलुस नए क्षेत्र की खोज में था। उसकी दृष्टि राज्य के सीमांत प्रदेशों पर थी। वह कहता है, जब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा। दूसरे शब्दों में उसका लक्ष्य रोम नहीं था, वह साम्राज्य की एक छोर से दूसरी छोर तक जाना चाहता था। वह कहता है, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट होगी। अतः रोम उसका गंतव्य स्थान नहीं था, वह साम्राज्य के अंतिम सिरे पर जाना चाहता था। मेरे मित्रों, आज आप में से कितने लोग इस प्रकार की इच्छा रखते हैं कि अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने गांव या अपने राज्य के लोगों को सुसमाचार सुनाएं, ताकि वे भी महान आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। पौलुस का यह एक महान दर्शन था। मेरे प्रियो, अब प्रश्न यह उठता है, क्या पौलुस स्पेन गया था? यदि वह गया था तो हमारे पास उसका ब्यौरा नहीं है, और न ही उसकी इल्लुरिकुम की यात्रा का कोई लेखा है। हम तो जान भी नहीं पाते कि वह वहां गया था, यदि पद 19 में वह इसका उल्लेख नहीं करता। मेरा अपना विचार है कि पौलुस स्पेन और रोमी साम्राज्य के शेष भागों में अवश्य गया था। मेरे तर्क का आधार उसके अंत समय के वचन है। दूसरा तिमोथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। यदि पौलुस स्पेन नहीं जाता तो यह बात न कहता, क्योंकि उसकी सूची में स्पेन था, अन्यथा उसकी सूची अधूरी रह जाती। मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि आप भी अपनी दौड़ पूरी करें, अपने जीवन में उन सूचियों को तैयार करें जहां पर परमेश्वर के वचन का प्रचार अभी नहीं हुआ है। आज मैं भी वचन के माध्यम से आपको यही उत्साह देना चाहता हूं। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसके 25 और 26 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु अभी तो पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूं, क्योंकि मकीदुनिया और अख्या के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों के कंगालों के लिए कुछ चंदा करे। मेरे प्रियो, वह यरूशलेम जाना चाहता था कि वहां के गरीब पवित्र जनों के लिए दान ले जाए और अपने हाथों से उन्हें दे। क्यों? क्योंकि उसने अपने ही हाथों से यरूशलेम की कलीसिया को उजाड़ा था। उसने यरूशलेम के विश्वासियों को सताने में अगुवाई की थी। अतः इस महान प्रचारक के मन में यह था कि उनके लिए कुछ दान ले जाकर क्षतिपूर्ति करे। लिखा है कुछ चंदा। मित्रों, यह चंदा का जो मूल यूनानी शब्द है उसका वास्तविक अर्थ है सहभागिता। मित्रों, यह शब्द विश्वासियों द्वारा कुछ भी आपस में बांटने के लिए काम में लिया जाता था। इसमें सब कुछ था, मसीह, वचन, प्रार्थना, प्रभुभोज तथा भौतिक दान। विश्वासियों की सहभागिता परमेश्वर के साथ थी, मसीह यीशु के साथ थी, और एक दूसरे के साथ दान देने में थी। सहभागिता का अर्थ पीठ थपथपाना नहीं है। खाने के लिए तो प्रायः लोग सहभागिता करते हैं, परंतु विश्वासियों के लिए सहभागिता का अर्थ है मसीह की बातों की परस्पर चर्चा करना। यहाँ पौलुस यरूशलेम जाने का विचार प्रकट कर रहा है, जहाँ वह कभी कलीसिया को सताता था, और अब उनके साथ सहभागिता करना चाहता है, संगति करना चाहता है, और उनके लिए दान ले जाना चाहता है। प्रेरितों के काम 24 अध्याय उसके 17 पद में इसका ऐतिहासिक लेख है। पौलुस ने उससे कहा, बहुत वर्षों बाद मैं अपने लोगों को दान पहुंचाने और भेंट चढ़ाने आया था। पौलुस के लिए यह चंदा बहुत ही महत्वपूर्ण था। मेरे मित्रों, पौलुस इसकी चर्चा दूसरे कुरिन्थियों के पत्री उसके अध्याय 8 और 9 में करता है। मेरे प्रियो, यह कितनी ही महत्वपूर्ण और विशेष बात है कि पौलुस अपनी सारी बातों को हमारे सामने रखता है ताकि इस पत्री के द्वारा हम उन बातों को जान पाए कि पौलुस परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए कहां कहां गया। इतना ही नहीं, वह यरूशलेम भी जाना चाहता है क्योंकि उसने एक समय मसीहियों को सताया था और आज वह वहां उनके साथ में संगति करने के लिए जाना चाहता है, सहभागिता करना चाहता है, उनकी क्षतिपूर्ति के रूप में दान देना चाहता है। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। मैं यह भी नहीं जानता कि आपने किस प्रकार की क्षतिपूर्ति के विचार किए हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आप अभी तक उबर कर बाहर नहीं आ पाए हैं। मित्रों, आज आपके लिए मौका है कि आप आज पौलुस की इस गवाही के द्वारा अपने जीवन को देखें और परमेश्वर के निकटता में आए और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं आपकी निकटता में आकर उनसे प्रेम करना चाहता हूँ, अपने उन शत्रुओं से प्रेम करना चाहता हूँ, उन्हें मैं क्षमा करना चाहता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। मित्रों, निश्चय जाने कि परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त किया है। अपने मित्रों को बताएं, अपने पड़ोसियों को बताएं और इस वचन के लिए प्रार्थना करें ताकि बहुत से लोग जो अभी भी परमेश्वर के प्रेम से वंचित हैं परमेश्वर को जान सकें और अपने जीवन में शांति और आनंद और उद्धार को प्राप्त करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको फिर से एक बार आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
करता है प्यार हमें वो, कृपा वो करता हमेशा, वो है मेरा सहारा, वो ही है मेरी आशा। परमेश्वर यहोवा, हम उसके बच्चे हैं, वो है मेरा पिता। परमेश्वर यहोवा, हम उसके बच्चे हैं, वो है मेरा पिता।
करुणा हमेशा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी। पीढ़ी कायम रहती है। हम उसकी प्रजा हैं और वो हमारा राजा है।